रिवांश ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां बहुत सारे अजीब अजीब सामान पड़े हुए थे जो कि निर्जीव होने के बावजूद हिलडुल रहे थे। ये अलीजा के जादू का ही कमाल था। पूरे कमरे का अच्छे से मुआवजा करने के बाद रिवांश ने कहा, त्रिशान ने आपको बता दिया होगा कि हम एक पिशाच हैं, हम सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। क्या आप हमारी इसमें कुछ मदद कर सकती हैं? हम चाहते हैं। रिवांश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अलीजा ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक लॉकेट रख दिया। ये लॉकेट अपने गले में धारण कर लो, इसके अंदर लगा पत्थर सूरज की रोशनी को अवशोषित करता रहेगा और सूरज की रोशनी तुम्हें जला नहीं पाएंगी। रिवांश हैरानी से उस लॉकेट को देख रहा था। उसके अंदर एक पीले रंग का पत्थर लगा हुआ था जो कि देखने में सूरज की रोशनी जैसा ही नजर आ रहा था। शुक्रिया, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? रिवांश को अभी भी उस पर संदेह हो रहा था। जरूर करेगा, क्या लगता है शिमला में तुम अकेले वैम्पायर हो क्या? मुझे नहीं पता था कि जंगल में रहने वाले पिशाच इस बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, तुम लोग काफी शक्तिशाली हो और बाहर रहने वाले वैम्पायर नाम के पिशाच हैं। उन्हें बस इंसानों के साथ रहना, खाना या अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने जितना ही मतलब होता है। वैसे इस लॉकेट की एक खास बात और है कि इसे पहनने के बाद तुम इंसानों के खाने का स्वाद भी ले पाओगे। तो क्या उसके बाद हमें किसी के खून पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम लोगों को खून पीने के लिए किसी को मारने की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम चाहो तो ब्लड बैंक में जाकर खून पैसों से खरीद लो और उसे काफी दिन तक यूज में ले सकते हो। अब क्या हर चीज में सिखाऊं? अलीजा ने थोड़ा झुंझलाकर जवाब दिया। रिवांश उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो भी इंसानों के बीच रहकर एक सामान्य जिंदगी बिता सकता है, और तो और इसके लिए उसे किसी की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी। हम आपका एहसान मैं कोई एहसान नहीं कर रही, हर चीज की एक कीमत होती है, तो इसकी भी एक कीमत लगेगी, अलीजा ने रिवांश की बात बीच में काटकर कहा। और वो क्या? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, त्रिशान ने सब सेटल कर दिया है। अब जाओ और अपने लिए रहने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ लो। माना कि मैंने तुम्हारी बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन इंसानों के बीच रहने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, अलीजा ने मजाकिया लहजे से कहा। क्या? रिवांश ने सवालिया नजरों से पूछा। क्या सारे सवालों के जवाब मुझे भी देने पड़ेंगे? तुम कभी तो इंसान थे ही ना, बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता, इतना भी नहीं पता? अब और कुछ पूछना है? जी नहीं, हम चलते हैं। रिवांश ने अलीजा से वो लॉकेट लिया और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने वो लॉकेट पहन लिया। वो वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अलीजा की आवाज आई। वो अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी, सुनो, अगर फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधा मेरे पास आना, मेरे पास सभी तरह के प्रॉब्लम के सोल्यूशन हैं। त्रिशान ने आपको इस लॉकेट की क्या कीमत दी होगी? रिवांश जवाब में चिल्लाया। कुछ भी नहीं, वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं तो मजाक कर रही थी, अलीजा ने हंसते हुए कहा। रिवांश ने दूर से ही हां में सिर हिलाया और बिजली की तेजी से जंगल की ओर चला गया। क्रमशः अगली सुबह राजवीर जी आकांक्षा को लेकर फिर से राजपुरोहित जी के पास गए। जाह्नवी भी उन्हीं के साथ थी। उन दोनों को राजपुरोहित जी के पास छोड़कर राजवीर जी उनके कक्ष के बाहर खड़े थे। आकांक्षा, जंगल से आने के बाद तुमने अपने अंदर या आसपास के माहौल में कोई बदलाव महसूस किया है क्या? राजपुरोहित जी ने पूछा। मुझे अलग अलग तरह के सपने आते हैं, लेकिन सपने तो किसी के बारे में भी हो सकते हैं राजपुरोहित जी, आकांक्षा ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम अपने मन को एकाग्र करो और थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठो, अगर तुम्हें कोई नई शक्ति मिली होगी तो उससे वो जागृत हो जाएगी, राजपुरोहित जी ने कहा। लेकिन राजपुरोहित जी, इसका मकसद तो पूरा हो गया है, फिर आकांक्षा को शक्तियों की क्या जरूरत है? जाह्नवी ने बीच में पूछा। बस वही तो हम जानना चाहते हैं कि आकांक्षा का मकसद पूरा हुआ है या नहीं। अगर इसकी शक्तियां जागृत हो गई, इसका मतलब अभी भी इसका मकसद अधूरा है, राजपुरोहित जी ने उसकी उलझन को दूर करते हुए बताया। और ध्यान कैसे केंद्रित होगा? आकांक्षा ने पूछा। उसके लिए तुम्हें अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना है और अपने सांसों को छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को महसूस करना है। जैसे ही राजपुरोहित जी ने आकांक्षा को ध्यान लगाने की विधि बताई, उसे रिवांश की याद आ गई, क्योंकि उसने भी उसे इसी तरह करने को कहा था। बोलो, करोगी ना? राजपुरोहित जी की आवाज सुनकर आकांक्षा का ध्यान टूटा, उसने हां में सिर हिला दिया। ठीक है, फिर तुम आज पूरे दिन एक अलग कक्ष में बैठकर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करोगी। क्या, पूरे दिन? लेकिन ये टाइम कुछ ज्यादा ही नहीं है राजपुरोहित जी, जाह्नवी ने आंखें बड़ी करके कहा। हाँ, क्योंकि एक मिनट में तो हो नहीं सकता ना, क्या पता एक दिन लगे या एक महीना, लेकिन एक बार आकांक्षा का ध्यान केंद्रित हो गया तो उसकी शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन वो जागृत हो जाएगा। मैं रामदीन जी से कहकर तुम्हारे लिए दूसरे कक्ष की व्यवस्था करवा देता हूँ। राजपुरोहित जी आकांक्षा के जवाब का इंतजार किए बिना वहां से उठकर बाहर आ गए और रामदीन को सब कुछ समझाया। राजवीर जी भी उनके साथ थे। वो आकांक्षा की भलाई के लिए वो राजपुरोहित जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। रामदीन जी आकांक्षा को एक अलग कक्ष में ले गए जहाँ वो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसी कक्ष के बाहर त्रिशान और जाह्नवी खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है वो कर पाएगी? जब रिवांश ने उसे ऐसा करने को कहा था तब उससे नहीं हो पा रहा था, त्रिशान ने कहा। जैसे तुम सबकी बातें छुपकर सुनते हो वैसे ही अंदर जाकर झांक कर देख लो ना कि अक्षु कर पा रही है या नहीं। क्या सच में? रुको अभी देख कर आता हूँ, कहकर त्रिशान उस कक्ष की तरफ बढ़ने लगा जहाँ आकांक्षा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ये हो क्यों नहीं पा रहा, कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिमाग से रिवांश का ख्याल जा ही नहीं रहा। पता नहीं राजपुरोहित जी ने भी कौन से काम में लगा लिया। अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे पास शक्तियां हैं या नहीं, आकांक्षा बंद आंखों से बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज सुनकर त्रिशान ने झटके से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तुम ठीक से कोशिश करोगी तभी तो होगा ना, तुम लोग किसी भी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? यहाँ पूरी दुनिया तबाह होने की कगार पर है और तुम्हें अभी भी अपने प्यार की पड़ी है, त्रिशान गुस्से में आकांक्षा के ऊपर चिल्ला पड़ा। जाह्नवी भी उसके पीछे अंदर आ गई और उसे आकांक्षा पर चिल्लाता देखकर उस पर गुस्सा हो गई। क्रमशः अगली सुबह।